Iran Radio Podcast.
सदियों तक अफ्रीका एक समृद्ध भूमि रही है जहाँ के लोग व्यापार मार्गों पर एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे, लेकिन जैसे जैसे यूरोपीय युद्धपोतों ने महाद्वीप के तटों पर एक के बाद एक लंगर डाला, अफ्रीकी शहर और देश एक एक करके उपनिवेशीकरण का शिकार होते गए। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 55वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। हम बात कर रहे थे अफ्रीका की। उपनिवेशवाद के प्रसार से पहले अफ्रीका में सड़कें और बाजार थे जहां लोग हजारों वर्षों से एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे। अफ्रीका पहुंचने वाले यूरोपियों ने सबसे पहले इन मार्गों की पहचान की और उन्हें नष्ट किया। यूरोपियों का मानना था कि अफ्रीकियों को एक दूसरे के साथ संवाद की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यूरोपियंस के साथ व्यापार ही पर्याप्त है। सदियों से अश्वेत लोग गोल्ड कोस्ट और आइवरी कोस्ट के बीच नाव से यात्रा कर रहे हैं। पुर्तगालियों ने इन दोनों क्षेत्रों के बीच अटलांटिक तट पर एक बड़ा किला बनाया और गोल्ड कोस्ट से आइवरी कोस्ट आने जाने वाली नावों पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तटों के बीच संचार कट गया ताकि वहां के लोग पुर्तगालियों से ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। पुर्तगालियों ने दूर दराज के मार्गों पर भी कब्जा कर लिया और कपास, नमक और मोतियों जैसे अन्य उत्पादों के व्यापार पर भी अधिकार कर लिया। कालों को आपस में व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं था और इस तरह उनके स्थानीय उद्योग तबाह हो गए। कपड़ा उद्योग और तलवारें और दूसरे हथियार बनाना उनका सपना था, एक ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं हुई। इथोपियाई दरबार ने, कि जो पुर्तगाली कपड़ों और तलवारों के प्रति आकर्षित था, 1520 में अनुरोध किया कि पुर्तगाली दरबार देश में कारीगरों को भेजे जो अश्वेतों को ये सामान बनाना सिखाएं। पुर्तगाली अदालत ने इस अनुरोध का कड़ा विरोध किया। यह अनुरोध 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक, अर्थात लगभग 400 वर्षों तक दोहराया गया और यूरोपियंस ने हर बार इसे ठुकरा दिया। जितने वर्षों तक उनके राजनेता और सैनिक अफ्रीका में रहे, यूरोपीय वैज्ञानिक अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों के ज़्यादा से ज़्यादा दोहन के तरीके खोजते रहे। ऐसा ही एक तरीका था श्रम का वैश्विक विभाजन। ये मॉडल ऐसा था जिसमें यूरोपीय कारखानों की ज़रूरत के खनिज और कच्चा माल अफ्रीकी खदानों और बगानों से प्राप्त किया जाता था। प्रत्येक अफ्रीकी देश को केवल एक खनिज या कृषि उत्पाद का उत्पादन करना था। युगांडा में किसानों को केवल सन, तंजानिया में भांग और सेनेगल और गाम्बिया में मूंगफली उगानी थी। अफ्रीका के प्रत्येक क्षेत्र में केवल एक ही फसल पैदा की जाती थी और लोग अपना पेट भरने के लिए यूरोपीय लोगों पर निर्भर थे। सेनेगल और गाम्बिया, जो अब केवल मूंगफली पैदा कर रहे थे, वहाँ कभी चावल की फसल लहरा रही होती थी, लेकिन उसके बाद वो चावल के लिए यूरोप पर निर्भर हो गए। अगर वहाँ चावल की कीमत बढ़ जाती थी या धन की कमी हो जाती थी तो अकाल पड़ जाता था, जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे जाते थे। तांबा और आयरन अफ्रीकी खदानों से प्राप्त किया जाता था, लेकिन वहाँ उसके लिए कोई उद्योग नहीं था। सन और मूंगफली अफ्रीकी खेतों में उगाई जाती थी, लेकिन उन्हें नए उत्पादों में बदलने के लिए कोई कारखाना नहीं था। अगर अफ्रीकी स्वयं माल का उत्पादन करने में सफल भी हो जाते तो भी उन्हें निर्यात करने की अनुमति नहीं थी और यूरोपीय माल के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उनमें क्षमता नहीं थी। यूरोपीय लोग अपने देश से अफ्रीकी देशों में सस्ते दामों पर माल आयात करते थे ताकि काले कारीगरों द्वारा उत्पादित माल बाजार में ना बिक सके। 1935 में ब्रिटिश नियंत्रण वाले अफ्रीकी देशों के गवर्नरों की एक बैठक में पूर्वी अफ्रीका में कुछ वस्तुओं के उत्पादन की बात हुई, लेकिन ब्रिटिश गवर्नरों ने इस विचार का कड़ा विरोध किया। युगांडा के ब्रिटिश गवर्नर ने कहा, अगर ये सामान युगांडा में उत्पादित होता है तो हमें इससे कोई लाभ नहीं होगा। तंजानिया के गवर्नर की भी यही राय थी। उन्होंने सभी को ब्रिटिश विदेश सचिव के एक कथन की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था, पूर्वी अफ्रीका को कई वर्षों तक बिना किसी कारखाने के रहना होगा। इस क्षेत्र का औद्योगिकीकरण करने का प्रयास बिल्कुल भी सुखद नहीं है। ब्रिटिश लेबर पार्टी के प्रतिनिधि अफ्रीकी देशों में कारखानों के निर्माण के विरोध में अधिक सहानुभूतिपूर्ण रुख अपना रहे थे। जब ब्रिटिश संसद में ये चर्चा चल रही थी कि अफ्रीकियों को उनके देश में कारखाने खोलने की अनुमति दी जाए या नहीं, तो एक लेबर सांसद ने सहानुभूतिपूर्ण लहजे में कहा, जो अफ्रीकी जंगल में रहते हैं वो किसी कारखाने के शोर से प्रभावित नहीं होते हैं। उन्हें प्रतिदिन विशालकाय मशीनों के पास लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना पड़ता है। वे हमारे उन श्रमिकों की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में हैं जो आजीविका के लिए कारखानों में कष्ट उठाते हैं। हम नहीं चाहते कि अफ्रीका के लोगों को कठोर औद्योगिक जीवन का अनुभव करना पड़े, इसलिए हम अफ्रीका में किसी भी प्रकार का कारखाना खोलने का विरोध करते हैं। यूरोपियंस को पता था कि वो हमेशा अपने सभी कार्य जोर जबरदस्ती से नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अश्वेतों की विचारधारा को ऐसा रूप देना था जिससे उनमें प्रतिरोध की भावना खत्म हो जाए और वे उनके आदेशों का पालन करते रहें। अफ्रीकी संस्कृति को बदलना यूरोपीय लोगों का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था। शुरुआत में अश्वेतों का मानना था कि श्वेत सभ्य हैं। पत्रिकाओं में छपने वाले विज्ञापनों और शहरों और गांवों में लगे बिलबोर्डों पर श्वेत पुरुष या महिला को दिखाया जाता था, सुनहरे बाल और नीली आँखों वाले पुरुष या महिला को। हर किसी को ये विश्वास दिलाना था कि सिर्फ श्वेत ही सुंदर होते हैं। इसका दूसरा मकसद इन चित्रों को देखने वाले अश्वेतों को अपमानित महसूस कराना था। श्वेतों की तरह दिखना काले या अश्वेतों की सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए। यूरोपीय कालों के बच्चों को स्कूल भेजने पर कोई आग्रह नहीं करते थे। हाँ, अगर वो स्कूल जाते थे तो उन्हें गोरों की इच्छा के अनुसार पढ़ाई करना होती थी। फ्रांस के कब्जे वाले पश्चिम अफ्रीका में सिर्फ 2% बच्चे ही स्कूल जाते थे। गोल्ड कोस्ट में 1930 में 9% और 1940 में 13% बच्चे का स्कूल में नामांकन हुआ था। ये अफ्रीका में सबसे उन्नत शिक्षा प्रणालियाँ थीं, क्योंकि मोजाम्बिक और अंगोला में जो पुर्तगाली कब्जे में थे सिर्फ 1% बच्चे ही स्कूल जाते थे। इन स्कूलों का पाठ्यक्रम श्वेतों के लिए बेहतर और अधिक सेवा की भावना उत्पन्न करने के लिए तैयार किया गया था। इन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले अश्वेतों की विचारधारा ने वैसा ही रूप लिया जैसा श्वेत चाहते थे। यूरोप सभ्य है और अफ्रीका असभ्य है। इसके अलावा जो भी यूरोपीय लोगों का अनुसरण करता है वो भी सभ्य है। इन लोगों में से एक फेलिक्स हाउफोएट बोइग्बी नाम का व्यक्ति था। जब उसने सुना कि उसके कुछ देशवासी फ्रांस से आज़ादी की मांग कर रहे हैं, तो उसने कहा, आज़ादी की बात करना अपने पैरों के बजाय सिर के बल चलने जैसा है, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। हाउफोएट बोइग्बी की सोच वैसी ही बन गई थी जैसी गोरे चाहते थे। उसकी संस्कृति और सोच बदल गई। हालांकि ये बात अलग है कि जब आइवरी कोस्ट आज़ाद हुआ तो हाउफोएट बोइग्बी इस आज़ाद देश के राष्ट्रपति बने। एक ऐसा देश जो सिर्फ देखने में आज़ाद था लेकिन बैकडोर से शासन गोरों का ही था। हाउफोएट बोइग्बी के राष्ट्रपति काल में न सिर्फ देश में फ्रांसीसियों की संख्या में कमी नहीं आई, बल्कि पहले से अधिक संख्या में फ्रांसीसी व्यवसायी और इंजीनियर आइवरी कोस्ट पहुँचे, ताकि उन संसाधनों और खदानों का अधिक उपयोग किया जा सके जो तब तक अछूते थे। शिक्षित अश्वेतों में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने यूरोपीय लोगों के तमाम प्रयासों के विपरीत धीरे धीरे आजादी के बारे में सोचना शुरू किया। ऐसे ही एक शख्स का नाम पैट्रिस एमरी लुमुम्बा था। पहले तो सभी शिक्षित अश्वेतों की तरह उन्होंने भी अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवादियों का समर्थन किया, लेकिन जब उन्होंने एक धार्मिक मिशनरी के रूप में अफ्रीका के विभिन्न भागों की यात्रा की तो उन्होंने अपनी आँखों से उत्पीड़न देखा और वे स्वतंत्र सेनानियों के विचारों से अधिक परिचित हुए। कांगो मूलतः एक बेल्जियम उपनिवेश था और बेल्जियम के राजा ने के जो कांगो को अपनी निजी संपत्ति मानते थे वहाँ भारी निवेश किया था। कांगो में बेल्जियम के अधिकारियों ने महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाया और उनके हाथ पैर काट दिए ताकि वे मूल निवासियों को बंधुआ मजदूर बनने के लिए मजबूर कर सकें। कभी कभी वे उनकी आंखों में एसिड डाल दिया करते थे। बेल्जियम के खूनी राजा ने अपने ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए लगभग 1 करोड़ निर्दोष लोगों को क्रूर तरीकों से मौत के घाट उतार दिया। इन अपराधों के बारे में जागरूकता और श्वेत लोगों के नस्लवादी व्यवहार के अवलोकन ने लुमुम्बा को एक संघर्षकर्ता बना दिया। उसके बाद वो जहां भी गए लोगों को संघर्ष के लिए प्रोत्साहित करते थे और उनसे प्रतिरोध करने तथा उत्पीड़न के विरुद्ध खड़े होने का आह्वान करते थे। लुमुम्बा ने कांगो राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना की और अपनी स्वतंत्रता गतिविधियों के लिए कई बार जेल गए। 1960 में बेल्जियम को अंततः कांगो की स्वतंत्रता को मान्यता देने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज़ादी मिलने के बाद संघर्षकर्ता नेता पैट्रिस लुमुम्बा को देश का प्रधानमंत्री चुना गया, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देने वाले वक्ताओं की सूची में उनका नाम नदारद था। दरअसल बेल्जियम के राजा के प्रति उनके कठोर रुख के डर से ये कदम उठाया गया था। समारोह में अपने भाषण में बेल्जियम के राजा ने कांगो में बेल्जियम उपनिवेशवाद की उपलब्धियों का बखान किया। उन्हें कांगो में यूरेनियम, हीरे और सोने के संसाधनों के हाथ से निकल जाने की सबसे ज्यादा चिंता थी, इसलिए उन्होंने कांगो की नई सरकार से आग्रह किया कि वो देश में बेल्जियम द्वारा स्थापित संरचना को नष्ट न करे। बेल्जियम के राजा ने इस बात पर जोर दिया कि उनका देश कांगो की सरकार और जनता के साथ खड़ा रहेगा। पैट्रिस लुमुम्बा ने अचानक मंच पर पहुंचकर सभी को हैरान कर दिया और बेल्जियम के राजा के खिलाफ तीखा भाषण दिया। उन्होंने कहा, हमें बेल्जियम के राजा ने आज़ादी भीख में नहीं दी है, बल्कि युद्ध और संघर्ष से हमने इसे हासिल किया है। वर्षों से हम पर थोपे गए उपनिवेशवाद और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए दी गई कुर्बानियों का हम सम्मान करते हैं और उस पर गर्व करते हैं। पैट्रिस लुमुम्बा द्वारा कांगो की आज़ादी के समर्थन में दिए गए पहले जोशीले भाषण से लेकर बेल्जियम सरकार के सहयोग से उन्हें फांसी दिए जाने तक सिर्फ 200 दिन का समय लगा। बाद में ऐसे दस्तावेज सामने आए जिनसे पता चलता है कि उनकी हत्या में ब्रिटिश और अमेरिकी सरकारों की भूमिका भी थी। लुमुम्बा की नई सरकार जल्द ही आंतरिक तनाव और अराजकता का शिकार हो गई। बेल्जियम के लोगों ने एक अलगाववादी समूह के समर्थन से उनकी वैध सरकार का तख्ता पलट कर दिया। पैट्रिस लुमुम्बा सिर्फ 36 साल के थे जब उन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। इस युवा नेता के शव को कब गहरी कब्र में दफनाया गया, फिर उसे खोद कर निकाला गया, 200 किलोमीटर दूर ले जाया गया, पुनः दफनाया गया, फिर आरी से उसके टुकड़े टुकड़े किए गए और आखिर में अपराध के सबूत मिटाने के लिए उसे तेजाब में घोल दिया गया। कई वर्षों बाद बेल्जियम के पुलिस कमिश्नर जेरार्ड सॉटेट ने, के जिन्हें लुमुम्बा के अवशेषों को निपटाने का काम दिया गया था, कबूला के इस अपराध को अंजाम देते समय उन्होंने उनका एक सोने का दांत और 2 उंगलियां काटी थीं। यूरोपीय उपनिवेशवादियों की आदत थी कि वे पीड़ितों के अवशेषों को लूट के रूप में अपने देशों में ले जाते थे। इस अपराध के 38 साल बाद जेरार्ड सॉटेट ने एक चित्र में उनके द्वारा निकाले गए दांत और उंगलियों को शिकार के स्मृति चिन्ह के रूप में पेश किया। पश्चिम ने आधिकारिक तौर पर 1977 में अफ्रीकी महाद्वीप से अपनी वापसी की घोषणा की थी, लेकिन साक्ष्य दर्शाते हैं कि अफ्रीकी देश अभी भी पश्चिमी उपनिवेशवाद और शोषण से मुक्त नहीं हो पाए हैं। सिर्फ शोषण का रूप और प्रकार बदल गया है और अब ये नए उपनिवेशवाद के ढांचे के अंतर्गत किया जा रहा है। लगभग सभी अफ्रीकी देश भ्रष्ट और पश्चिम पर निर्भर सरकारों से पीड़ित हैं। अफ्रीका पर यूरोपीय और अमेरिकी आक्रमणों के बाद कम से कम 12 मिलियन लोग गुलाम बनाए गए। ये प्रक्रिया कभी नहीं रुकी। वर्तमान में 10 लाख से अधिक अफ्रीकी बच्चे यूरोपीय चॉकलेट कंपनियों के फार्मों पर अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हैं, जबकि उनकी दैनिक मजदूरी $1 से भी कम है। कांगो में अफ्रीकी मजदूर एप्पल, डेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और टेस्ला जैसे यूरोपीय प्रौद्योगिकी दिग्गजों के लिए कोबाल्ट खदानों में काम करते हैं और उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। 2019 में इन खदानों में काम करने वाले 60 से अधिक अफ्रीकी बच्चों की खदान ढहने से जान चली गई, जबकि उनके परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। पश्चिमी देश अभी भी अफ्रीका में अपने हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए मानवीय अधिकारों का बहाना करते हैं। पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिवर्ष अफ्रीका की प्राकृतिक संपदा के अरबों डॉलर लूट लिए जाते हैं। 2007 में विश्व बैंक ने घोषणा की थी कि माली में ड्रिलिंग के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं और इसलिए उसके सोने के संसाधनों का निर्यात किया जाना चाहिए। 7 वर्षों के बाद माली के 70% सोने का संसाधन यूरोप को निर्यात कर दिया गया, जबकि लाभ का केवल 8% ही इस देश को दिया गया। नाइजर के 90% लोग बिजली से वंचित हैं। फ्रांसीसी अपनी अधिकांश बिजली की ज़रूरतें इस देश के यूरेनियम को लूट कर पूरी करते हैं। अमेरिका ने सूडान को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटकर उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और वहां का सोना और तेल लूट लिया। एक वैश्विक न्याय कार्यकर्ता का कहना है, पश्चिमी समाजों में आम धारणा यह है कि अफ्रीकी गरीब हैं और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। हालांकि अफ्रीकी देशों को वास्तव में ज़रूरत इस बात की है कि पश्चिमी देश उनके संसाधनों को लूटना बंद कर दें। दोस्तों, जो पॉडकास्ट आपने सुना वो रेडियो हिंदी द्वारा तैयार किया गया था। अगर आप और भी पॉडकास्ट देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। एड्रेस है iranradio.ir/hi।